दोस्तों, आज जिंदगी में खुशी कम है और गम ज्यादा, या यूं कहिए कि सिर्फ गम ही गम है, खुशियां हमें तलाशनी पड़ती हैं। मेरा नया कैसेट आपके टेप में बज रहा है, तभी तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये कैसेट गमों के बादलों को हटाकर खुशी के सूरज की तरह आपकी जिंदगी को मुस्कुराहट की रोशनी से भर देगा। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ अकलमंदों के लिए है, और आप अकलमंद हैं, तभी तो आपने इसे खरीदा है। तो प्यार से सुनिए, मोहब्बत से सुनिए, दिल से सुनिए, दिमाग से सुनिए। वैसे दुनिया में कौन पैसे वापस देता है, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम रखा है हसीना आए पैसे वापस। एक छक्के ने साहब एक पार्क की दीवार पर थूक दिया, माली की आंखों में चमक आ गई। अक्सर अगर कोई वहां पर थूक दे तो माली उससे पैसे ऐंठ लिया करता था। जैसे ही माली ने देखा कि छक्के ने दीवार पर थूक दिया, वहीं से जोर से चिल्ला के बोला, काहे ससुर के नाती, अरे काहे दीवार को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे हो, काहे भैया बगैर सोचे समझे काहे थूक दिया। हाय हाय हाय, ऐसे गुस्सा हो रहा भाई जैसे उसके मुंह पर थूक दिया हो। हाँ हाँ, दीवार पर ही तो थूका है, और फिर ये तो सरकारी पार्क है। अरे तुमको मालूम नहीं ना, यहाँ पर थूकने का जुर्माना भरना पड़ता। देखो सामने क्या लिखा है। हाँ सामने क्या लिखा भाई, और सामने तो ये अभी लिखा है कि जूते पहन के घास पे ना चलें, और तू अभी अभी उसी घास पर जूतों का तकिया बनाए बड़े आराम से लेटा भाई, बीड़ी पी रहा था। हाँ खामखा गुस्सा हो रहा हम पे।
अरे बेकार की बात नहीं करो, निकालो 50 रुपए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ
हाँ, हमने बड़े बड़ों का मुसीबत में डाल दिया, तू हमें मुसीबत में डालेगा क्या।
देखो यहाँ जो आदमी या औरत थूकता है ना, उसको जुर्माना देना पड़ता है।
हाँ तो आदमी औरत को देना पड़ता होगा भाई, हम तो बीच वाले हैं, बीच वाले हम तो कौन से कानून से पैसे मांग रहा है। अगर एक काम कर, हमारे पास तो 5 रुपए हैं, लेना है तो लेनी तो हाट अलग, धंधे के टाइम में बॉनी खराब कर रहा। हाँ माली ने सोचा, भागते भूत की लंगोटी भली, 5 रुपए ले लिए और पार्क के बाहर उन्हीं 5 रुपए की चाट खाने के लिए बाहर आया, चाट ली, और जैसे ही चाट खत्म हुई, माली दोना चाट रहा था कि छक्का वहां से मुस्कुराता हुआ निकला और माली के पास आके बोला,
हाय बाबू, हाय क्या कर रहा भाई।
अरे देखते नहीं चाट रहे हैं,
छक्के ने बड़े प्यार से कहा। हाँ एक बात बता भाई, अगर हम ना थूकते तो तू क्या चाटता। एक मारुति चालक ने रास्ते में जा रहे एक साहब की बीबी को टक्कर मार दी, बीबी बेचारी बाल बाल बच गई, हल्की फुल्की खरोंची आई। इस घटना से उत्तेजित होकर महिला के पति ने मारुति चालक का गरेबान पकड़कर बगैर दरवाजा खोले उसे ऐसे ही खींच लिया और गुस्से से बोले, क्यों बे कर्फ्यू की औलाद, जब कोई काम सलीके से नहीं कर सकता तो उसमें हाथ क्यों डालता है, घर बैठ घर बैठ। यहाँ पर चला आया अपनी किस्मत पर रोने के लिए। अबे बरसाती मेढक, क्यों सड़क पे मारुति लेकर निकल आया, कहाँ देख रहा था, कहाँ चला रहा था, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, और सुनाएगा अब कोई नया बहाना, बोल बोल क्या कर रहा था। मारुति वाला अपनी इज्जत को बातों की सुरक्षा से बचाता हुआ बोला,
माफ कीजिए साहब, मैं गौर से देख रहा था, आंखें फाड़ के देख रहा था, सच तो ये है कि मैं आपकी बीवी को देख रहा था, इसलिए गलती से पांव ब्रेक से स्लिप हो गया। आप बहुत किस्मत वाले हैं साहब कि आपको इतनी सुंदर बीवी मिली।
साहब बीवी खुश हो गई और खुश होके बोली,
जाने दीजिए ना, बेचारे का हाथ बहक गया।
साहब और गुस्से में आ गए, क्या कहा सुंदर बीवी मिली, अबे ज्यादा खूबसूरत जूता हर देखने वाले को अच्छा लगता है, लेकिन उसके काटने का दर्द पहनने वाला ही जानता है। बीवी की तारीफ करके बचना चाहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन साहब आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बीबी को हल्की फुल्की खरोंची तो आई है, मरी तो नहीं।
साहब उसे किनारे पे ले गए और जोर से मारते हुए बोले, अबे कमबख्त नाकारा हरामखोर बेईमान, इसीलिए तो मार रहा हूँ। अरे कोई काम तो ठीक से किया कर, एक्सीडेंट भी किया तो किसी काम का नहीं। हाँ साहब, मारुति चालक की आंखों में एक रोशनी सी आ गई और साहब से बोला,
मैं फिर यहाँ से कल 4 बजे निकलूंगा, आप बीबी को लेके आ जाइए।
एक महिला के पति महोदय जो बीमारी से सूखकर कंगाल बन गए थे, कभी कभी दवा पिलाने के लिए चादर झाड़कर उन्हें देखना पड़ता, आंखें बचते हुए चराग की तरह बगल में बैठी हथनी की तरह मस्त बीवी को निहार रही है, मुंह बिल्कुल गुल्लकदानी के छेद जैसा हो गया, बेचारे तय नहीं कर पाते कहाँ हैं। बीवी से ऐसे अंदाज में बोले जैसे हवा में सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं। बीवी को देखा और बोले, मैं जिंदा हूं या मर गया। बीवी ने एक लंबी सांस खींची और बोली,
काश ऐसा ही होता,
और फिर चिल्ला के बोली,
जब तक डॉक्टर नर्स दवाइयां और कमरे का बिल बाकी है घबराइए नहीं, डॉक्टर आपको मरने नहीं देंगे।
मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में?
नरक में, 16 आने नरक में, जब तक मैं आपके पास बैठी हूँ समझो नरक में हो। डॉक्टर जरा यहाँ आइए, देखिए ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब आए, उन्होंने पति महोदय की नब्ज देखी, इंजेक्शन लगाया और उनकी बीबी से बोले,
देखिए मैं यही बगल में हूँ, अगर दोबारा ये बहकी बहकी बातें करें तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा।
जैसे ही डॉक्टर साहब गए, पति महोदय ने महसूस कर लिया कि उनके दिन करीब आ गए, अपनी बीबी से बोले,
सुनो मेरे मरने के बाद मेरी कार अपने भाई को दे देना, मकान अपनी बहन को, और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा लो, मेरा बैंक का पैसा भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लाओ कागज लाओ। बीबी का रोम रोम खिल उठा।
कितनी प्यारी बातें कर रहे हो, चिंता नहीं करो तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे।
और साहब फिर पति महोदय ने गुस्से से कहा,
और सुनो तुम्हारी माँ ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए थे, बुढ़िया ने अभी तक नहीं लौटाए, उससे हर हाल में रुपए ले लेना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। बीबी घबरा कर चिल्लाई,
डॉक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए फिर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
छोटे मोटे दुकानदार साहब जो गलियों में फेरियां लगाते हैं और छोटी मोटी दुकानदारी किया करते हैं, कभी कभी अगर गलत माहौल में पड़ जाएं तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। अब एक फेरी वाला कंगी चूड़ी वगैरह बेचा करता था, गलियों में आवाजें लगाया करता था, लोग आवाज सुनकर उसे बुलाते, चला जाता माल बेचता, पैसे लेता, बेचारे का पेट पलता। तो एक बार देखिए कितनी गलत जगह फंस जाता है, एक गली में चला जा रहा है और अपने अंदाज में आवाजें लगाता है,
इन कंगी कंगी वाला, सेप्टिक बिंदी वाला, रंगी चूड़ी वाला, ले लो कंगा काला, बालों की चोटी लो कानों का भाला, हम भी अनोखे माल भी निराला, प्यार से बुलाओगे दौड़ा चलाऊंगा, देखने के पैसे नहीं फ्री में दिखाऊंगा, कंगी कंगी वाला, सेप्टिक बिंदी वाला।
एक दरवाजे से एक आवाज आई,
अरे ओ भैया कंगी वाले जरा एक कंगी दिखा दे।
जैसे ही साहब वो वहां पहुंचा, बगल में एक गंजा खड़ा था,
एक मुझे भी। अबे तू क्या करेगा चटियल मैदान पर कंगे का हल चला के?
लो बहन जी आप देख लो, आपकी फसल बहुत हरी भरी है।
कंगी बड़ी कमजोर है, बिल्कुल तेरी तरह।
मजबूती का अंदाजा तो इस्तेमाल के बाद ही मालूम पड़ता है, आज माँ के देख लें आप। साहब महिला ने कंगी को जैसे ही अपने बालों में यहाँ वहाँ घुमाया कि कंगी के 2-4 दांते निकल गए, बड़ी गुस्से से कंगी फेंक के बोली,
ले भैया संभाल अपनी कंगी, एक बार में ही दम तोड़ दिया, बेकार कंगी बेचता है।
बेचारे ने घबरा के कंगी ले ली और गुस्से से उस गली से निकला और उसने अपने गाने का अंदाज बिल्कुल बदल दिया और चिल्लाता हुआ चला जा रहा है,
कंगी कंगी वाले सेप्टिक बिंदी वाले, पहले पैसे लूंगा बाद में कंगी दूंगा, इस्तेमाल करने की कभी ना कहूंगा, माल बिके ना बिके घर लौट जाऊंगा और इस गली में दोबारा नहीं आऊंगा, कंगी कंगी वाला।
एक शराबी जो काफी पिए था लड़खड़ाते हुए कदमों से एक होटल में पहुंचा। बड़े जोरों से भूख लग रही थी लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। एक कुर्सी पर बैठ गया और बैटर को आवाज लगाई,
कोई है? अरे कोई है?
साहब बैटर आया। शाप, ये भूत बंगला फिल्म का गेस्ट हाउस नहीं है शाप, जो रात गुजारने के लिए आवाज लगा रहे कोई है कोई है। अरे शाप ये होटल है, क्या चाहिए?
क्या मिलता है होटल में?
इधर में शाप समोसा कचोरी इमरती बालूशाही नमकीन पेड़ा गुलाब जामुन मलाई के लड्डू बर्फी डोसा मैगी आलू पराठे दाल सब्जी रायता चावल खीर पापड़ कचोरी सब मिलेगा शाप।
क्या सब मिलेगा? शाप दो दो प्लेट ले गया, शाप दो दो प्लेट।
लगता है शाप जब से पेड़ा हुआ तब से भूखा है।
ए, एक बात सुनो, कुछ और है?
हाँ शाप, बेरा है, चपरासी है, मैनेजर है, कुर्सी है, वो टेबल है शाप, गैस है, केवला है।
ठीक है बाद में सोचेंगे, पहले ऑर्डर का माल लेकर रहा जाओ।
बैटर साहब सामान लेने चला गया और जैसे ही वो सामान रखकर लौटने लगा उसने फिर आवाज लगाई,
है सुन भाई, इधर आ, देख ये दाल के अंदर मक्की है मक्की।
अब शाप वो क्या है कि दाल में तो शाप मक्की निकलेगा, शाप हाथी तो निकलेगा नहीं ना।
देखे।
खाने के बाद जब बिल आया और शराबी ने देखा कि 500 रुपए का बिल, और जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला हाथ फटी जेब के नीचे बाहर निकल गया। शराबी समझ गया पैसे नहीं है। उसने बड़े प्यार से फिर बैटर को बुलाया और बोला,
एक बात बोल रहा हूं, अगर खाने के बाद किसी के पास पैसे ना हो तो आप लोग उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, मतलब कैसा व्यवहार करते हैं?
वो शाप 100 रुपए के बिल वाले से शाप पूरा होटल शाप करवाते बुलवाते, वो शाप 200 रुपए से जो बिल होता ना शाप हम बर्तन झूठे शाप करवाते, वो शाप 500 रुपए वाले को शाप कपड़े उतार के शाप नंगा करके शाप लात घूंसे मार के शाप होटल के बाहर फेंक देते शाप।
क्या नंगा करके?
हाँ शाप, कुछ भी नहीं छोड़ता शाप।
नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं शाप, कुछ भी नहीं। मैं वो क्या है कि लपेटने के लिए अखबार तो देते होंगे,
वो शाप कभी कभी इतना रहम कर देते।
एक काम करो।
क्या शाप, कुछ और लाऊं?
नहीं कुछ और नहीं भैया, एक अखबार ले आया।
बैटर ने समझ लिया इसके पास पैसे नहीं है, मैनेजर को बुलाया, शाप 500 रुपए का बिल शाप पेशा नहीं है। मैनेजर ने शराबी को पकड़ा और देर लात घूसे जबरदस्त मारने के बाद होटल के बाहर फेंक दिया। और जैसे ही मैनेजर मार के लौटा, बैटर को जाने क्या सूजी साहब, वो भागता हुआ गया और शराबी में दे लाते हैं दे घूसे दे लाते हैं दे घूसे। मैनेजर साहब बड़े ताज्जुब में, ए जरा क्या बात है, क्यों मार रहा उसे? जब मैंने उसे मार दिया फिर तू क्यों मार रहा? ओ शाप क्या है, आप तो शाप अपना बिल वसूल कर लिया, ओ शाप हम अपना टिप वसूल कर रहा था। हमारे देश में साहब मेहमान नवाजी का एक दर्जा होता है, मेहमान को भगवान का रूप देते हैं और कहते भी हैं कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। लेकिन कुछ लोग मेहमानों को वो इज्जत नहीं देते जो उन्हें मिलना चाहिए और इस फिराक में लगे रहते हैं कि हम बगैर उनकी खातिरदारी के बगैर सम्मान दिए किस तरह अपने घर से बाहर निकालें। तो हमारे मोहल्ले में एक सिंधी भाई है, अगर कोई मेहमान उनके यहाँ पहुँच जाए तो बड़े प्यार से बिठा लेंगे इज्जत देंगे लेकिन उसकी खातिरदारी में एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे और ऐसे उसकी इज्जत करेंगे कि वो खुद भागने पर मजबूर हो जाएगा। तो देखिए साहब, एक साहब उनके यहाँ आए, जैसे उन्हें दरवाजा खटखटाया सिंधी भाई उन्हें अंदर लेकर आते और किस तरह उनकी खातिरदारी करते हैं।
अरे बाबा राम राम साईं जी नमस्कार। अरे बाबा बहुत दिनों के बाद आया नी? जी वो मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि, अरे तो बाबा सोचना क्या, रे यार का घर है यार का, रे बाबा आओ नी बैठो ना, रे बैठो साईं बैठो, रे ठंडा पियोगे गरम पियोगे क्या पियोगे, ये क्या है कि जब तक गरम बनेगा तो मैं ठंडा पी लूंगा, अरे तो बाबा कितने मना किया नी बैठो यार बैठो ना, रे बाबा एक बात बताओ, तो बाबा हम शरबत पिलवाते लेकिन बाबा शरबत कैसा पियोगे नी, संतरे का पियोगे बाबा, मौसमी का पियोगे, नींबू का पियोगे, अरे बाबा किसका शरबत पियोगे नी, देखिए आप जो चाहे पिलवा दे, अरे बाबा कैसी बात करता नी, अरे संतरे का शरबत पियोनी बैठो बाबा संतरे का पियोनी, तो बाबा मीठा पियोगे के नमकीन पियोगे, जे मीठा पिलवा दे, तो बाबा मीठा पियो यार शर्माता काय को है मीठा पियोनी, बाबा शक्कर का पिएगा के गुड़ का पिएगा, जे अरे बाबा शक्कर का ठीक है बाबा शक्कर का पियो शक्कर का पिलवाएंगा ना, तो बाबा एक बात बोलो के कप में पिएगा बाबा के गिलास में पिएगा, जे जे जो बाबा गिलास में पी लेंगे, तो बाबा गिलास में पियोड़ी यार बाबा कौन सी कंपनी का गिलास में पिएगा, जी आप एक काम कीजिए आप रहने दीजिए समय ज्यादा हो रहा मैं चलता हूँ, अरे बाबा ऐसे कैसे, अरे आप हमारे मेहमान होनी, अरे बाबा बैठोनी, अरे हम आपको भिजवाएंगे, ये जैसी आपकी मर्जी मुझे देखिए मुझे जल्दी भिजवा दीजिए, अरे बाबा जल्दी भिजवाएंगे ना, तो बाबा काय से जाओगे बाबा, टू सीटर से जाओगे, बस से जाओगे बाबा के टेम्पू से जाओगे नी, भाड़ में जाओ तुम्हारा टेम्पू टू सीटर और बस, और भाड़ में जाओ तुम, मैं पैदल चला जाऊंगा मुझे यहाँ पर एक मिनट रुकना नहीं मैं अभी जाता हूँ, अरे बाबा जाओ नी यार जाओ नी, अरे जब जाना तो जाओ, लेकिन बाबा कल मुलाकात होगी क्या नहीं, ठीक है कल मिलूंगा, तो बाबा सुबह मिलेंगे दोपहर के मिलेंगे शाम को मिलेंगे कब मिलेंगे, सुबह मिलूंगा सुबह, तो बाबा घर में मिलेंगे या ऑफिस में मिलेंगे कि पार्क में मिलेंगे, नरक में मिलूंगा नरक में समझे, मैं जा रहा हूँ, अरे जाओ ना बाबा गुस्सा काय को होता, नरक में मिलने के लिए हम नहीं आएंगे, हाँ ठीक है जाओ। कभी कभी जिंदगी में बड़ी अजीब गरीब घटनाएं हो जाती हैं। एक बार एक बस को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और लूटने के बाद जब उन्होंने लूटने की रकम को जेवरों को गिना तो कुछ आश्चर्य में पड़ गए और आपस में कुछ खुसर पुसर करने लगे। उसके बाद उन्होंने सारे पैसेंजर यानी यात्रियों को बुलवाया, बोले भाई आपका जो जो सामान नकदी जेवर रुपये वगैरह आप लोग वापस ले जाइए। यात्री बड़े परेशान हुए, तो यात्री पूछते हैं भाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये करने की वजह क्या थी, वो क्या बतलाते हैं, एक कविता की शक्ल में आप इसे सुनिए बड़ा मजा आएगा और एक सत्य घटना है, ये पेपर में भी आपने पढ़ा होगा इसे, तो एक कविता की शक्ल में आप इस घटना को सुने कि यात्री और डाकुओं के बीच में एक बस के अंदर किस तरह के हालात पैदा होते हैं और क्यों होते हैं। एक दिन भोपाल से इंदौर जा रही बस में डाकू पड़ गया। डाकुओं को देख बस को सारो पैसेंजर डर गयो। कईयन की नानी मरी, कईयन को चेहरो नीलो पीलो पड़ गयो। घबरा के कईयन को पजामो तक गीलो पड़ गयो। लूट के बाद जब डाकुओं ने सारे माल को गिनवायो, जेवर नगदी मिला के बस 20,000 ही पायो। कांपते हुए सरदार बोलो सारे पैसेंजर आओ। और अपने हाथों से अपनो माल वापस ले जाओ। गाड़ी में बैठे एक नेता को ई बात पर बहुत ही अचरज भयो कि डाकुओं को सरदार रावण से कर्ण कैसे बन गयो। वो बोलो सरदार हम सबके मन की शंका मिटवाओ। ई परिवर्तन को का कारण है जरा खुलकर बतलाओ। सरदार बोलो अबे का फिजूल में हम डाकुओं को मरवा बेगो। पचास हजार तो थाने में देनो है हमें क्या मिल पावेगो।
آج کے وقت میں دو وقت کی روٹی ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی. جن گھروں میں چولہے نہیں جلتے انسانوں کے پیٹ جلتے ہیں. کچھ لوگ پیٹ کو ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں اور کچھ پیٹ پہ ہاتھ رکھے گھومتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. اب ایک صاحب نے زندگی کی گاڑی میں پیٹرول روپی بھوجن ڈالنے کے لیے ایک بڑھیا آئیڈیا نکالا. یہ نئے کپڑے پہن کر چاہے وہ پڑوسیوں سے مانگے کیوں نہ ہو, بڑھیا سج دھج کے کسی بھی شادی میں شامل ہو جاتے. لڑکی والے یہ سمجھتے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوں گے, لڑکے والے سمجھتے لڑکی والوں کی طرف سے ہوں گے. تو صاحب یہ اپنا پیٹ بھر لیتے, کھانا کھا لیتے اور بڑھیا طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ایک بار مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک بار یہ گزر رہے تھے کہ پاس میں کھانا چل رہا تھا, یہ بالکل تیار ہو کر وہاں پر پہنچ گئے. اور جیسے ہی پیار سے کھانے کا مزہ لینے لگے کہ بغل میں کھانا کھاتے ہوئے ایک صاحب نے انہیں گھور کے دیکھا اور بولے,
آپ یہاں کیسے بھائی؟ ویسے شہر کی 99 شادیوں میں میں نے آپ کو دیکھا ہے.
وہ صاحب مسکرانے لگے, ایسے سوالوں کے عادی ہو چکے تھے. مسکراتے ہوئے بولے,
دیکھیے ہے لڑکی کو میں نے گود میں کھلایا ہے اور اس پریوار سے میرے اچھے سمبندھ ہیں, اچھے تعلقات ہیں اور آنا جانا میرا روز کا ہے, اپنے لوگ ہیں.
لڑکی کو گود میں کھلایا ہے؟ بھائی یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی.
صاحب گھبرا گئے, شاید کچھ غلطی ہو گئی. سنبھلتے ہوئے بولے,
نہیں نہیں لڑکا بھی مجھے پیار سے چاچا کہتا ہے, دونوں ہی گھروں سے ہمارا اچھا رشتہ ہے.
صاحب دوسرے صاحب اور غصے سے بولے,
کیا لڑکا پیار سے چاچا کہتا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے, ایک وقت کی روٹی کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ بے وقوف. ارے کھانے سے پہلے کم سے کم پوچھ تو لیا کرو کہ کس اپلکش میں کھانا ہے, کس لیے کھانا رکھا گیا ہے, کم سے کم پوچھ کر آیا کرو. شرمندگی تو نہیں اٹھانا پڑے گی, لڑکی کی شادی میں آئے ہیں, لڑکے کی شادی میں آئے ہیں, شرم کرو شرم. ارے بھائی کچھ دنوں پہلے کھنہ صاحب کے پتا جی بھگوان کو پیارے ہو گئے, یہ ان کی 13ویں کا کھانا چل رہا ہے, کم سے کم پوچھ کے آیا کرے, شرمندہ تو نہیں ہو گئے جیسے میں پوچھ کے آتا ہوں.
ہمارے ایک متر ہیں صاحب مائیکل جیکسن, ویسے ہم انہیں پیار سے مائیکل انجیکسن کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ان کی شادی ہوئی, لیکن سہاگ رات اتنی دلچسپ منی کہ اسے یاد کر آج بھی مائیکل صاحب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہوا یوں کہ سہاگ رات والے دن شام کو مائیکل صاحب کی بیوی ان سے بولی,
آؤ ڈارلنگ, ہمارا شہیلی بولتا کہ سہاگ رات والے دن ہسبینڈ وائف کا چھک کے چھڑا دیتا ہے.
مائیکل صاحب جوش میں آتے ہوئے بولے,
آؤ بالکل ٹھیک بولتا, سہاگ رات والے دن ہسبینڈ وائف کا چھک کے چھڑا دیتا ہے.
صاحب بیوی نے کہا,
پھر ایک کام کرنے کا, ہمارے چرچ میں ایک ایک گھنٹے کے بعد میں گھنٹہ بجتا ہے, جیسے ایک گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجے تم ہم کو پیار کرنا لب کرنا کرے گا نا؟
او کیا نہیں کرے گا ڈارلنگ, جیسے چرچ کا گھنٹہ بجے گا ہم تم کو پیار کرے گا.
صاحب ایک گھنٹہ بجا, ایک گھنٹے کے بعد مائیکل صاحب اور ان کی بیوی آپس میں پیار کرتے ہیں. دو گھنٹے بجے, تین گھنٹے بجے, چوتھے گھنٹے کے بعد مائیکل صاحب کے چھکے چھوٹنے لگے, آنکھیں بجتے چراغوں کی طرح ٹمٹمانے لگی, جیب پھٹے ٹیو کی طرح منہ سے باہر نکل آئی, پیر سوکھے پتوں سے پھڑ پھڑانے لگے. اس سے پہلے کہ اگلا گھنٹہ بجے مائیکل صاحب باتھ روم کا بہانہ کر کے گرتے پڑتے بڑی جوروں سے دوڑتے ہوئے چرچ پہنچے اور گھنٹے بجانے والے کو پکڑ لیا.
او ڈیئر, تم بہت اچھے آدمی ہے, ایک کام کرو, ہم تم کو 10,000 روپے دیتا, اب تم ایک گھنٹے کے بعد گھنٹہ نہیں بجانا, اب تم ایک کام کرنا 4 گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجانا, سمجھے؟
صاحب وہ نہیں, بالکل نہیں بولا. بڑے ہی گھبرائے ہوئے انداز سے مائیکل سے بولا,
نہیں نہیں صاحب ہم یہ نہیں کر سکتے, معاف کیجیے ہم یہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے پیسے رکھ لیجیے. آؤ کیا نہیں کر سکتا, ہم تم کو 10,000 روپے دیتا, اب تم 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجانا.
نہیں صاحب ہم نہیں کر سکتے.
کیوں نہیں کر سکتے,
वो क्या है साहब कि वो शाम को आपकी बीबी आई थी, वो हमको 20,000 रुपए दे के गई कि आज हर 15-15 मिनट के बाद घंटे बजाना। क्या लोग साहब गांव वालों को बड़ा ही बेवकूफ भोला वाला सीधा समझते हैं, लेकिन गांव वाले बड़े चालाक होते हैं। आइए मैं साबित करता हूं। एक बार एक गांव वाला बॉम्बे पहुंचा, एक फिल्म की शूटिंग में दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शक्ति कपूर बैठे हुए थे। बेचारा गांव वाला भी बगल में बैठ गया। एक लड़की सामने से चली आ रही थी। उस लड़की को देखकर हर कलाकार अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, गांव वाला भी सबसे बाद में अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार करता है, लेकिन सबसे जबरदस्त इजहार इसी गांव वाले का होता है। देखिए कैसे होता है। लड़की को देखा, शक्ति कपूर बोले,
आओ ये प्यारी प्यारी लड़की को देख रहे हो ना, आओ इसके कान में जो प्यारे प्यारे बाले हैं वो मैंने दिए, आओ।
साहब दलित साहब बड़े गौर से लड़की को देखते हुए बोले, अरे शक्ति कपूर गौर से देखो, जरा गौर से देखो इस लड़की को, ये जो कान में भाले हैं ना ये तुमने दिए हैं, लेकिन कमबख्त ये लड़की जो खूबसूरत सैंडल पहने हुए है, ये प्यारी प्यारी जो चप्पलें पहने हुए है ना, वो हमने दी है, हमने, समझे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब वहां बगल में बैठे हुए थे, कब पीछे रहते, वो भी अपने अंदाज में बोले, हो 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 दलीप साहब सैंडल आपने दी है और शक्ति कपूर ने दिए हैं भाले, लेकिन लड़की जो प्यारा और खूबसूरत सा सलवार सूट पहने है वो हमने दिया है, हमने। बेचारा गांव वाला वहां बैठा हुआ था, तीनों को देखा और बड़े प्यार से बोला, आप लोग तीनों बहुत बेकार की बातें कर रहे हैं, क्यों क्या हुआ भाई, क्या तुमने भी कुछ दिया है क्या? अरे हमने क्या दिया, ऐसा है कि आप में से किसी ने सलवार सूट दिया, किसी ने भाले दिए और किसी ने सैंडल दी, वो लड़की के हाथ में जो आप बच्चा देख रहा है ना वो खिलाते चली आ रही, हमने दिया। अपनी गलती दूसरों पर डालना या उसे किसी कुर्बानी या महानता की शक्ल में पेश करना इंसान की फितरत है, वैसे गलतियां हर इंसान करता है। तो एक बार एक जानी मानी हीरोइन पानी के जहाज में विदेश यात्रा पर जाती है। अपनी 6 दिन की यात्रा के बाद जो उस पर गुजरती है उसका हाल वो अपनी डायरी में लिखती है। तो आइए जरा उसकी डायरी पर नजर डालें तो आप महसूस करेंगे कि वो अपनी गलती किस तरह अपनी कुर्बानी की शक्ल और महानता की शक्ल में बदलती है। हीरोइन की डायरी मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन गौर आप करें।
5 दिसंबर जहाज काफी आगे निकल आया, मौसम साफ है, हवाएं तेज चल रही हैं। 6 दिसंबर आज जहाज के कप्तान ने मुझे पहचान लिया, बहुत देर तक मुझे प्यार भरी नजरों से देखता रहा। 7 दिसंबर आज कप्तान ने मुझसे बहुत देर तक प्यार भरी बातें की और बार बार मुझे घूरता भी रहा। 8 दिसंबर कप्तान ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक प्यार भरी रात गुजारूं, मैंने गुस्से में कप्तान को चांटा मार दिया। 9 दिसंबर कप्तान ने कहा कि अगर मैंने उसे प्यार नहीं किया तो वह जहाज डुबो देगा और जहाज में सवार 2000 आदमियों की मौत हो जाएगी। 10 दिसंबर आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने कप्तान की बात मानकर 2000 लोगों की जान बचा ली।
दुनिया में भूल जाने की आदत अगर किसी इंसान को हो तो कभी कभी बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। अब एक साहब को भूल जाने की बड़ी बुरी आदत थी। एक बार वो घर पर बैठे हुए हैं और उनके गाल के दोनों तरफ जलने के बड़े खतरनाक निशान बने हैं। उनके एक दोस्त घर पर आए, उन्होंने एक तरफ गाल पर देखा कि जलने का बहुत बड़ा निशान बना है, तो वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। देखिए जो भूल जाया करते हैं बतलाते हैं कि उनके गाल पर जो जलने का निशान है वो कैसे बना, बड़ी प्यारी सी बात है। तो जैसे ही उनके दोस्त आए, उन्होंने जला हुआ गाल देखा और अपने दोस्त से पूछते हैं,
अयो यार, ये तेरे बाएं गाल पर जलने का इतना बड़ा निशान क्या जे? कुछ गड़बड़ क्या? क्या भाभी ने जलती लकड़ी फेंक के मारा क्या?
नहीं यार, वो ऐसी बात नहीं।
क्या बातें कर रहा? ये गरम तवे को तकिया समझ के लेट गया क्या?
नहीं नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ।
अयो इतना ना सही, थोड़ा पागल है ये। आप गाल के ऊपर जलने का इतना बड़ा निशान कैसे बनाया जी? क्या अंगारा खुद चल के तेरे गाल का चुम्मा लेने के लिए चूल्हे से निकल के आया क्या?
अरे यार ये बात नहीं है।
तेरे क्या बात जे? ये डबल रोटी सा सूजा मुँह लेके इधर उधर काय को बैठा? क्या गड़बड़ क्या हुआ?
वो यार कल बीवी ने फोन वाली मेज से फोन उठाकर कपड़ों पर प्रेस करने के लिए इस्त्री गरम करने को रख दी। मुझे ख्याल नहीं रहा, अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने बगैर देखे फोन की जगह गरम इस्त्री उठा के कानों में लगा ली। बस सारा कान और नीचे का पूरा हिस्सा जल गया।
अयो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आया नहीं। ये तेरा एक तरफ का कान जला, गाल जला, लेकिन ये दूसरे तरफ का कान और गाल कैसे जला जे?
क्या करूं यार, थोड़ी देर के बाद फोन की घंटी फिर बज उठी। मुझे भूल जाने की आदत है, मैंने दोबारा उठा के इस्त्री कान पे लगा ली।
वकालत का धंधा साहब बहुत ही बदनाम है, और वकील कभी ना कभी कहीं ना कहीं झूठ बोलते ही हैं। तो अगर हम इनकी जिंदगी में झांक कर देखें तो हर तरफ हमें झूठ और छल फरेब बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बगैर इसके अदालत में केस जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक वकील साहब एक शिक्षक के पास आए, हाथ जोड़ के बोले,
बाबा हमको डॉक्टर ने एड्स बताया, 2-4 महीने के अंदर बाबा हमारा क्रिया कर्म हो जाएगा, मर जाएगा बाबा। तुम हमको थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी बाबा, थोड़ा फारसी, थोड़ा मराठी, हमको बाबा 2-4 भाषा सिखाओनी, मरने के बाद बाबा स्वर्ग में जाएंगा, सब लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा मन बहलेगा। शिक्षक बड़े परेशान हुए, तो आप इसलिए ये भाषाएं सीखना चाहते हैं कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे तो ये लोग मिलेंगे हर भाषा के लोग, तो आप इनसे बातचीत करेंगे, दिल हल्का होगा। अरे बाबा और क्या, अरे उधर पर जाएंगे मराठी लोग मिलेंगे बाबा, सिंधी लोग मिलेंगे, हिंदी लोग मिलेंगे बाबा, हर तरह का लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा मन हल्का होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मरने के बाद स्वर्ग नहीं गए, अगर आप नरक चले गए फिर क्या होगा?
तो बाबा उधर काय को भाषा सीखना, उधर तो हमारा वकील लोग पहले से मौजूद है नहीं।
तो साहब ये वकीलों की बात है। एक साहब कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक कब्र पर लिखा था एक ईमानदार वकील। बड़े चक्कर में पड़ गए, बगल में एक साहब और आ गए,
बोले क्या बात है भैया, क्या बात है यार, बड़े गौर से देख रहे हो कब्र को?
ले यार देखो यार, एक कब्र में 2 आदमी दफना दिए।
अरे बोले नहीं नहीं, एक ही आदमी है।
अरे नहीं यार, लगता 2 आदमी। देखो क्या लिखा, एक ईमानदार वकील। अगर ईमानदार आदमी है तो भैया वकील नहीं हो सकता, और अगर वकील है तो ईमानदार नहीं हो सकता। ताज्जुब, एक कब्र में 2 आदमी। तो साहब ये आलम है कि लोग वकील के पेशे को ही खराब समझते हैं। और फिर उसके बाद आइए अदालत में। अदालत ऐसी जगह है जहां कई बार इंसानों की जिंदगी खत्म हो जाती है मगर मुकदमे खत्म नहीं होते। एक साहब 5 साल से कचहरी के चक्कर लगा रहे मगर केस और केस का फैसला हो ही नहीं पा रहा। एक बार उनके वकील और उनमें जबरदस्त बहस छिड़ जाती है, और देखिए उनकी आपसी बहस किस तरह वकील साहब के घर में ही अदालत का माहौल पैदा कर देती है। वो साहब गुस्से से आए वकील साहब के घर में घुसे और बड़े जोश में बोले, काहे वकील साहब, काहे बैठे हो, आराम कर रहे हो? अरे हमार तो दिल करता है कि आपकी चौखट पर सर पटक पटक के यहीं जान दे दूं, केस तो खत्म नहीं हो रहा, खुद को ही खत्म कर लूं।
अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई।
काहे नहीं कर सकते, का तुम्हारे बगैर पूछे कोई मर भी नहीं सकता का?
अरे शौक से मरो भैया, कौन मना करता,
पहले मेरी पूरी फीस तो अदा कर दो यार।
बड़े यार फीस अदा कर दो, अरे 5 साल में एक केस हल नहीं कर पाए, फीस मांगते हो।
मेरे पास 50 केस हैं यार।
अरे काहे के 50 केस, पहले एक तो हल करके दिखा दो। हर बार बच्चा समझ के तारीख के लड्डू हाथ में रख देते हो, बहला देते हो, परेशान हो गया।
अच्छा ये बताइए कि आपका केस क्या है?
और लो, 5 साल हम चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए कि तुम्हारे कोर्ट में सारे वकील और जजों के नाम हमको जबानी याद हो गए और तुम का हमारा एक केस याद नहीं हुआ।
अरे बहुत मामूली सा केस है वकील साहब, बहुत मामूली सा केस। तो भैया बहुत केस है यार हमारे पास, आप बताओ आपका क्या केस है?
अरे वो का है कि हम और हमारे साथी चौपड़ा के यहाँ डकैती डालने गए, वो हमारे एक साथी का फरसा धोखे से चौपड़ा की गर्दन में पड़ गया, चौपड़ा समझा के हम मर गए, बस मरने के डर से वो मर गया और पुलिस ने हमका पकड़ लिया।
वाह भाई वाह, मरने के डर से वो मर गया और पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसे बोलोगे अदालत में तो सामने वाला वकील तुम्हें घुमा के रख देगा।
अरे का है वकील साहब, हम पागल हैं का जो आराम से घूम जाएंगे? अरे हम उल्का घुमा के रख देंगे, 5 साल में ऐसे ही चक्कर नहीं काट रहे, बहुत कुछ समझदारी हमारे अंदर आ गई। हाँ
ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें तैयारी करवाना पड़ेगी। समझो तुम कटघरे में खड़े हो, ये अदालत है।
अच्छा ये अदालत है और हम कटघरे में खड़े हैं?
अरे यार समझ लो भैया समझ लो, हम तुम्हें रिहर्सल करवा रहे वहां की।
चलो ठीक है समझ लिया।
अब देखो जो मैं पूछूं समझना के सरकारी वकील पूछ रहा है और जवाब देना, मैं बताऊंगा कि वो तुम्हें कैसे घुमाएगा।
अरे यार तो घुमाओ भैया घुमाओ, हम पागल थोड़े ना जो घूम जाएंगे।
ठीक है ठीक है, अब ये बताओ, देखो हम नहीं पूछ रहे, सरकारी वकील पूछ रहा है कि जिस रात चौपड़ा का कत्ल हुआ तुम कहां थे, क्या घर पे थे या बाहर थे? हाँ और ना में जवाब दो। चलो
का कहा वकील साहब?
अरे भाई हाँ और ना में जवाब दो।
अरे यार तुम कैसे वकील हो?
क्यों क्या हुआ?
अरे भैया पहले कसम तो खिलवाओ भगवान की।
अरे यार ये वकील का, ये मेरा घर है भैया।
अच्छा तो अब हमारी समझ में आ गई।
क्या?
अरे यही समझ में आ गई कि वकील के यहाँ भगवान की कसम नहीं खाते हैं। ठीक है तो क्या कह रहे थे आप?
हम ये कह रहे थे कि वहाँ वकील जो भी पूछे हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है, तो भैया आप भी हाँ या ना में जवाब दो।
बा वकील साहब बा, अरे हम तो इसे एक सवाल पूछेंगे और तू भी हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाएगा।
अरे भैया हम वकील हैं, हमारा पेशा है, हम सब जवाब दे लेंगे।
अच्छा तो एक बात बताओ वकील साहब कि क्या आपने चोरी करना, लौंडियां छेड़ना और झूठ बोलना बंद कर दिया है? बताओ हाँ या ना में जवाब दो, बोलो बोलो।
क्या करे, चोरी करना, लौंडियां छेड़ना और झूठ बोलना बंद कर दिए तो हम हाँ या? अरे यार क्या करे,
क्या कर रहे, घुमा रहे वकील साहब, जैसा आप हमें घुमा रहे हम आपको घुमा रहे।
देखो मजाक छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने चौपड़ा को कैसे मारा।
तो ठीक है वकील साहब, हम रहे बलवान रहे दयावान रहे पहलवान रहे सुल्तान रहे, सब मिलकर डकैती डालने चौपड़ा के यहाँ रात के 2 बजे गए।
बस यही तो गलती है तुम्हारी, खुद मरोगे और सबको मरवाओगे।
अच्छा तो ऐसा है कि हम रहे और हमारे साथी डकैती डालने गए,
ये ठीक है, फिर क्या हुआ?
और किसी के हाथ में काहे के फरसा, किसी के हाथ में बल्लम कोई बंदूक लिए।
फिर गलत, फिर गलत।
अच्छा तो हम सभी शस्त्र लिए थे।
शाबाश ऐसे ही बोलना।
तो जैसे ही हम चौपड़ा के दरवाजे में पहुंचे के जाग गया।
अच्छा चौपड़ा जाग गया,
नहीं कुत्ता, कुत्ता जाग गया, बलवान ने घुमा के जोरदार लात मारी
कुत्ते को,
अरे नहीं दरवाजे को, दरवाजा धड़ाक से टूट के गिरा कि सभी ने एक साथ उसके ऊपर जम के मुक्का लात कर दी,
कुत्ते पर, अरे नहीं चौपड़ा पे।
सुल्तान ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली
चौपड़ा की,
अरे नहीं कुत्ते की, और फिर किसी ने बल्लम,
किसी ने सरिया, किसी ने बंदूक, अरे मार मार के ससुरे को वही ढेर कर दिया, कुत्ते को, अरे नहीं चौपड़ा को।
अरे यार क्या कर रहे तुम, कुत्ता चौपड़ा कुत्ता चौपड़ा, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
अरे वकील साहब घुमा रहे हैं। किराए के मकान साहब आजकल मिलते नहीं, आज के दौर में किराए का मकान तलाशना पारस मणि की खोज से कम नहीं। एक व्यक्ति मकान तलाशने के चक्कर में पागल सा हो गया, पैर की जूतियां घिस घिस कर उसका मजाक उड़ाने लगी, सर के बालों ने किसी बेवफा माशूक की तरह उसका साथ छोड़ दिया। गंजी चांद पर सूरज की गरम गरम किरणें हमेशा तबला बजाती रहती। एक बार सारा दिन ठोकरें खाने के बाद, मकान तलाशने के बाद शाम को एक नदी किनारे बैठा खामोश अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था कि अचानक उसके कानों में बचाओ बचाओ की आवाज टकराई। बगल में एक नदी थी, नदी में कोई डूब रहा था और आवाजें लगा रहा था, बचाओ बचाओ। साहब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और डूबते हुए व्यक्ति से बड़े प्यार से बोला, कौन हो भाई, क्या बात है, क्या हुआ? बेचारा सांसें लेते हुए बोला, मेरा नाम संतोष पाठक है, मैं बाजू वाली गली के चौथे मकान में किराए से रहता हूं, मुझे बचा लो, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे बचा लो। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई, किराए के मकान में रहता और उसे किराए का मकान चाहिए था, उसने डूबते हुए आदमी को बचाया नहीं, दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां वो किराए से रहता था और कमरे के मालिक के पास पहुंचकर बोला, आपके किराएदार का नाम संतोष पाठक है?
हाँ हाँ है, तो
वो नदी में डूब के मर गया, खत्म हो गया, आप एक काम कीजिए उसका कमरा मुझे दे दीजिए।
माफ कीजिए, मैंने वो अपने साले को दे दिया।
क्या बात कर रहे हैं आप, आपने साले को कैसे दे दिया, आपको क्या मालूम कि संतोष पाठक डूब के मर गया?
दिमाग खराब हुआ है तेरा, डूब के मर गया, अबे मैं ही उसे धक्का देकर आया था, चल।
दुनिया में हर इंसान अपने सामने वाले की, पड़ोसी की, दोस्त की बराबरी करना चाहता है, इज्जत में, दौलत में, शोहरत में, लेकिन कभी कभी जब ये बराबरी जिद की हद तक पहुंच जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल में डाल देती है। एक साहब की बीवी कोई भी वो चीज जो पड़ोसी लेकर आते उन्हें भी लाने के लिए मजबूर कर देती। अगर पति के पास स्कूटर नहीं या स्कूटर लेने की उनकी हैसियत नहीं और पड़ोसिन के पति ने स्कूटर खरीदा तो समझ लीजिए कि उनके पति की मुसीबत आ गई। शाम को घंटी बजने के पहले दरवाजे खुल जाते, चाय नाश्ता एडवांस तैयार, पति का जोरदार स्वागत। नाश्ते के बीच में पति के गंजे सिर पर बचे हुए दो चार बालों को प्यार से अपनी उंगलियों में लपेटते हुए उनकी बीवी कहती,
सुना पड़ोसी के घर स्कूटर आ गया, जाने कमीने अपने आप को क्या समझते, कैसे भी हो कल कहीं से भी आप स्कूटर लेकर आइए, क्या हम लोग उनसे कम है, एक बार हमारे यहाँ स्कूटर आ जाए मैं तो उनके दरवाजे के सामने खड़ा करूंगी। हाँ
बेचारे पति महोदय कहीं से कर्ज लेते, कुछ भी करते, स्कूटर लेकर आते, अगर पड़ोस में कहीं फ्रिज आ गया फिर उनकी मुसीबत।
सुना आपने, वो करम जली मुझे जलाने के लिए फ्रिज लाइए, कह रही थी ठंडा पानी ले लिया करो, गर्मी बहुत पड़ रही है, आज सुबह सुबह तो मेरे जख्मों पर नमक डालने के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, आप कहीं से भी फ्रिज लेकर आइए।
पति महोदय के हाथ करने वाला हाथ में और मुंह का मुंह में रह जाता। हर बार बीबी पड़ोसियों की बराबरी और नकल करने के लिए पति महोदय पर बार बार दबाव डालती। एक बार पति महोदय ऑफिस से जल्दी आए और आते ही बीबी से बोले, डार्लिंग तुम हमेशा कहती थी कि पड़ोसियों से कभी पीछे ना रहो, जैसा वो करे वैसा तुम भी करो, है ना?
हाँ बिल्कुल ठीक।
मेरी कसम।
अरे बाबा तुम्हारी कसम, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम हमेशा पड़ोसियों से आगे रहें।
पति महोदय ने जोर से आवाज लगाई, कामनी अंदर आ जाओ। एक लड़की दुल्हन के भेष में अंदर आई, पत्नी का दिमाग एकदम गरम।
क्या ये कौन है, कौन है ये चुड़ैल?
चुड़ैल नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरी दूसरी बीवी।
क्या मेरे रहते हो तुमने दूसरी बीवी?
मैं क्या करूं डार्लिंग, कल पड़ोस वाले खन्ना ने दूसरी शादी कर ली, अब तुम्हारी नाक रखने के लिए कि तुम्हें नीचा ना देखने पड़े मुझे भी मजबूरी में दूसरी शादी करना पड़ी। बताओ पड़ोसी ने कुछ और नया किया, अब मैं क्या करूं?
अब करने के लिए बचा ही क्या है?
एक साहब का लड़का शहर में पढ़ा करता था, जब कभी वो पास होता तो उनके घर पर लड़के की चिट्ठी आती, पिताजी मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, पिताजी आज मैंने फुटबॉल का मैच जीत लिया, पिताजी मैं बाहर जा रहा हूं। बाप को बड़ा बुरा लगता, उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, देखो बेटा तुम कुछ भी करो लेकिन अपने हर काम में मुझे भी शामिल किया करे, मुझे भी शरीक किया करे, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे कोई काम करो तो मैं मत लिखा करे, हम लिखा करे हम, ताकि हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती है। पिताजी हमने मैच जीता, पिताजी हमने हाई स्कूल पास कर लिया, समझ गए ना? साहब बहुत दिनों के बाद बेटे की चिट्ठी आई, बाप ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी दिमाग खराब हो गया।
राम 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 राम, अगर एक बार मेरे सामने आए मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूं, मैं इसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। राम राम राम, क्या लिखा है गधे ने?
साहब बीवी ने सुना और अपने पति की आवाज में गर्मी देखी तो पति से बोली,
क्या हुआ, क्यों गालियां दे रहा हूं मेरे लाल को?
अरे तेरे लाल को मार मार के हरा नीला पीला टेक्निकल ना कर दिया तो मेरा भी नाम नहीं। देखो क्या लिखा है कमबख्त ने।
क्या लिखा?
मैंने कहा था कि हमेशा मैं ना लिखा करो, हम लिखा करो। चिट्ठी आई है तुम्हारे लाल की, चिट्ठी में लिखा है, डैडी हमने एक लड़की पटाई।
क्या?
हाँ भाई, डैडी हमने एक लड़की पटाई, आज हमने उसका चुम्मा लिया। गधे हम बाहर गए, हम एक होटल में ठहरे, हमसे गलती हो गई, लड़की माँ बनने वाली है, मजबूरी में हमने शादी कर ली, हमारे दो जुड़वा बच्चे हुए, मेरा मर गया आपका जिंदा है, भिजवा रहा हूं पालते रहना।
एक नवाब साहब की बेगम उनकी गैर मौजूदगी में अपने पुराने आशिक से आंख मटक्का किया करती थी। एक बार वो अपने आशिक से मोहब्बत और प्यार का इजहार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर नवाब साहब ने दस्तक दी और घबरा के प्रेमी महोदय पलंग के नीचे छिप गए। बेगम ने दरवाजे खोले और बड़े प्यार से नवाब साहब का खैर मकदम किया, स्वागत किया और बोली,
आइए आप।
अबा बेगम, आप किसी और का इंतजार था क्या?
नहीं, वो क्या है कि आपने परसों आने को कहा था।
अम्मा जल्दी आ गए तो तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या बेगम? हम आपको तो लौटे जाते हैं।
नहीं नहीं आइए ना।
नवाब साहब को पहले से ही शक था, पलंग पर बैठ जाते हैं और जैसे ही पान की पीक थूकने के लिए नीचे झुकते हैं कि छिपे हुए आशिक को देख लेते हैं। बस नवाब साहब बात करते हैं बेगम से और बीच में झुकते हैं और बार बार थूकते रहते हैं और जो आशिक के मुंह पे गिरता है। बेगम का दिमाग खराब हो जाता है, बड़ी गुस्से से कहती हैं,
क्या बेहूदगी है, बार बार पलंग के नीचे क्यों थूक रहे हो?
नवाब साहब गुस्से से कहते हैं,
आमा बेगम कोई बेहूदगी नहीं, कोई बेहूदगी नहीं, आमा थूकने दो ना, पान की पीक है।
दिमाग खराब मत कीजिए, अब आप वहां पर बिल्कुल नहीं थूकेंगे।
आमा देखो बेगम, मैं सब कुछ जानता और समझता हूँ, दिमाग खराब मत करना मेरा। आमा मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा।
खून पी जाऊंगा? प्याऊ का पानी है जब पी जाओगे।
देखो देखो बेगम, मैं गुस्से में आ गया, तुम्हारी नाक काट लूंगा।
सूप नखा की नाक नहीं जो काट लोगे।
माँ ऐसे मुंह फाड़ रही है तो मुझे कच्चा खा जाएगी।
हमारे यहाँ सुअर का मांस हराम है। देखो बदतमीजी मत करो बेगम, मैं गोली मार दूंगा। तुम्हारे खानदान में किसी ने बंदूक ली जो गोली मारोगे? पेपरमेंट की गोली मारोगे क्या? अरे बंदूक तो मेरे भाई के पास है।
अम्मा तेरे भाइयों के पीछे मैं खजाले कुत्ते लगवा दूंगा, इतनी जगह काटेंगे कि मर जाएगा।
रहने दो, दो कुत्तों ने काटा दोनों मर गए, मेरे भाई का कुछ नहीं होना।
अम्मा बहुत बेवकूफ हो तुम, तुम्हारा भाई गधा, तुम नालायक, और तुम्हारे रिश्तेदार तो सारे के सारे कुत्ते हैं कुत्ते।
वो तो शादी के बाद हो गए, हमारे यहाँ तो सभी लोग अच्छे हैं। पहले ये बताइए कि आपने ये सब हरकतें क्यों की? आप बार बार नीचे क्यों थूक रहे हैं?
साहब नवाब साहब का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने बेगम के मुंह पर थूक दिया।
अम्मा बहुत हमारे थूकने पर पाबंदी लगा रही, ये लो हम आपके मुंह पर थूक देते हैं।
क्या?
बेगम का दिमाग खराब।
आपने मेरे मुंह पर थूका?
नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, शर्म करो बेगम शर्म करो, एक बार थूकने पर इतना गर्म हो रही हैं आप। अरे उस बेचारे को देखो, शरीफ आदमी को 25 बार थूक चुका, बिल्कुल नहीं बोल रहा है।
एक बार साहब जबरदस्त सर्दी पड़ रही और सर्दी की कांपती रातों में रेल के एक डिब्बे में सिर्फ दो मुसाफिर सफर कर रहे हैं और ये रेलगाड़ी बांधा की तरफ से चली जा रही जहां पर अधिकांश लोग गांव के हैं और गांव की वही अपनी भाषा बोलते हैं, तो तीसरे दर्जे का डिब्बा खिड़कियों से शीशे गायब। अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे में लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति है, हर डिब्बे में ही लिखा होता है, जिसे पढ़कर यात्री अपनी जरूरत की चीजें निकाल कर घर ले जाते हैं। तो साहब गाड़ी के अंदर ठंडी हवाएं जब दोनों के शरीर से टकराती हैं तो दांत आपस में टकराकर बेहतरीन धुन पैदा करती है। दोनों में एक गांव वाला एक शहर का। अचानक गांव वाले ने अपने फटे बदबूदार कंबल से कच्ची शराब की बोतल निकाली और शहरी बाबू से बोला,
काहे बाबू बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है कि रास्ते में ही कुल्फी जम जाएगी, घर पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या बताएं बहुत ठंड है, एक काम करो बाबू, ई दारू का दो चार घूंट मार लो, बस जान बच जाएगी।
वैसे शहरी को गांव वाला एक आंख भी नहीं भा रहा था, लेकिन मरता क्या ना करता, अनमने मन से उसने बोतल हाथ में ली और जैसे ही मुंह से लगाई कि सारी शराब बाहर आ गई। गुस्से से गांव वाले से बोला,
क्या भाई कितनी घटिया और कड़वी और बदबूदार शराब है, ये शराब है कि जहर?
गांव वाले ने कंबल से देसी तमंचा निकाला और साहब पर तान कर बोला,
कहा छचुंदर की औलाद, हमार सामने हमार दारू की बुराई करत है, हैं इका जहर बतात है, अरे जल्दी से दो चार घूंट मार ले वरना गोली मार दूंगा, हमेशा के लिए तो हाथ ठंड खत्म हो जाएगी, बार जल्दी पी।
साहब शहरी बाबू ने घबरा के चार पांच घूंट हलक के नीचे उतारे, आड़ा तिरछा मुंह बनाया और फिर शांत हो गए। गांव वाला उनके करीब आया और बोला,
काहे बाबू मजा आया कि नहीं, ठंड दूर हुई कि नहीं?
बाबू साहब बोले, हाँ यार ठीक कड़वी और बेकार और बदबू भी बहुत आ रही थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही कमाल कर दिया, अगर तुम तमंचा ना दिखाते तो मैं पी नहीं पाता, मजा आ गया। गांव वाले ने मुस्कुराते हुए बाबू से कहा,
हमका मालूम था साहब, तभी हम तमंचा दिखाया, अब ये पकड़ो तमंचा और हमको धमकाओ ताकि दो चार घूंट हम भी पीने, बहुत ठंड लग रही है।
एक साहब घर देर से पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही बीवी उनकी क्लास ले लेती है, वो बतलाते हैं कि देर क्यों हुई और बीच बीच में उनके बच्चे भी परेशान करते हैं, तो देखिए वहां पर क्या आलम होता है। साहब देर से पहुंचे, बीवी ने पहुंचते ही उनकी क्लास ले ली।
आज बड़ी देर से आए?
नहीं नहीं, रास्ते में एक गधा मरा हुआ पड़ा था। तभी साहब एक बच्चा बीच में बोला,
मामे मामे मेरी कमीज है ना आगे से पट गई और पीछे से ना मेरी पैंट पट गई।
बेटा आगे कमीज पैंट के अंदर कर ले, पीछे बाहर रहने दे, आगे फटी कमीज अंदर हो जाएगी और पीछे कमीज बाहर रखने से फटी पैंट छिप जाएगी। अब चुप हो जा। तो आप क्या कह रहे थे, रास्ते में एक गधा?
हाँ हाँ, वो एक गधा मरा हुआ पड़ा था। मैंने नगर पालिका को फोन किया कि इस गधे की फिर एक बच्चा बीच में।
मम्मी, भगवान क्या गुसलखाने में रहते?
किसने कहा?
वो जब पापा गुसलखाने में होते तो आप ही तो कहती, हे भगवान कितनी देर गुसलखाने में रहोगे।
चुप हो जा बाबा, चुप हो जा, तेरी बात में सुनूंगी। हाँ फिर क्या हुआ?
फिर मैंने कहा कि इस गधे की फिर एक बच्चा।
मम्मी,
खबरदार जो कोई बीच में बोला, तुम्हारी बात में सुनूंगी, पहले इस गधे की सुनने दो। हाँ जी, क्या हुआ?
अरे वो मैंने कहा कि इस गधे की जान निकल गई है, इसे उठवा लो। वो मजाक में कहने लगे कि पंडित जी उठवा लेंगे, पर क्रियाकर्म और मंत्र जाप तो आपको ही करना होगा।
अच्छा, तो फिर आपने जवाब नहीं दिया?
अरे मैंने बहुत तगड़ा जवाब दिया। मैंने कहा भैया कर देंगे, वो तो हमारा काम ही है, मगर पहले हमने ये सोचा कि इसके रिश्तेदारों को खबर तो कर दें। एक बार दो चार बुड्ढे बैठे हुए अपने गांव की आबो हवा के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक बोला,
भाई हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान ही नहीं है, एक आदमी 200 सालों तक जिंदा रहता है, कब्रिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ती।
दूसरा बोला, हमारे यहाँ एक आदमी को गोली मार के खत्म किया, क्या करते, कब्रिस्तान को बने 500 साल हो गए लेकिन वहां शुरुआत ही नहीं हो रही थी, जब एक को गोली मारी तब कहीं जाके उसका उद्घाटन हुआ।
तीसरा और भी ज्यादा खतरनाक,
हमारे यहाँ की वादी अलग है, एक आदमी को 2 बार मारा तब कहीं जाके कब्रिस्तान का उद्घाटन हुआ।
2 बार क्यों भाई?
अरे एक बार शहर में गोली मारी, गांव में ले आए कब्रिस्तान के उद्घाटन के लिए, गांव में आते ही जिंदा हो गया। दोबारा फिर गोली मारी तब कहीं जाके कब्रिस्तान का उद्घाटन हुआ।